अध्याय 49 हमारा भोजन। हम जो भोजन खाते हैं उसी से शरीर बनता है। देह के सूक्ष्म भाग निरंतर टूटते फूटते रहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की गति में क्षति अवश्य होती है, जिस क्षति की पूर्ति भोजन द्वारा की जाती है। देह का प्रत्येक अंग खुराक का अंश मांगता है। मस्तिष्क को उसका हिस्सा मिलना चाहिए और हड्डियों, मांसपेशियों और स्नायुओं को भी उनका भाग मिलना चाहिए। ये एक अद्भुत कार्यवाही है जिसके द्वारा भोजन रक्त में परिवर्तन होता है और ये रक्त देह के भिन्न भिन्न भागों के निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। पर यह कार्यवाही निरंतर जारी है और प्रत्येक स्नायु, मांसपेशी तथा सूक्ष्म भाग को जीवन और बल देती है। उन भोजनों का चुनाव करना चाहिए जो देह के निर्माण के लिए उत्तम तत्व प्रदान करते हैं। इस चुनाव में क्षुधा सुरक्षित पददर्शक नहीं है। खाने की बुरी आदतों के द्वारा क्षुधा भ्रष्ट हो जाती है। अक्सर वो ऐसे भोजन की मांग करती है जिससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और बल देने की अपेक्षा कमजोरी पैदा करती है। हमारे समाज की रीति रिवाज से सुरक्षापूर्वक मार्गदर्शन नहीं हो सकता। चारों ओर बीमारी और दुख के फैलने का साधारण कारण भोजन के प्रति सामान्य गलतियों ही हैं। परंतु भोजन के सारे पदार्थ भले ही वे आरोग्यकर हों, हर हालत में हमारी जरूरत के अनुसार उपयुक्त नहीं है। भोजन को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा भोजन ऋतु, आबहवा और व्यवसाय के अनुकूल होना चाहिए। कुछ खाद्याहार जो एक मौसम या आबहवा में प्रयोग किए जाते हैं, वे दूसरे मौसम या आबहवा में उपयुक्त नहीं होते। इसी प्रकार विभिन्न व्यवसाय वालों के लिए विभिन्न भोजनहार उपयुक्त होते हैं। अक्सर वे भोजनहार जो कठिन शारीरिक परिश्रम करने हारे लाभ के साथ उपयोग कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे रहने वालों तथा मस्तिष्क से कड़ी मेहनत करने वालों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होते। परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार के स्वास्थ्य भोजन पदार्थ दिए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव और यथोचित विवेक के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उत्तम प्रतीत हो उसमें से चुन लेना चाहिए। परमेश्वर की मनुष्य के आहार के प्रति आरंभिक योजना। उत्तम भोजन में क्या क्या सम्मिलित है उसे जानने के लिए हमें मनुष्य के आहार के प्रति परमेश्वर की आरंभिक योजना का अध्ययन करना चाहिए। जिसने मनुष्य को उत्पन्न किया और जो मनुष्य की आवश्यकताओं को समझता है, उसी ने कहा, सुनो, जितने बीज का भोजनहार भी नियुक्त किया है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनी, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। उत्पत्ति 1:29। पाप के अभिशाप के अधीन धरती जोतकर आजीविका कमाने के लिए एदेन से निकालने पर मनुष्य को खेत की उपज, सब्जी खाने की आज्ञा मिली। उत्पत्ति 3:18। हमारे सृष्टिकर्ता ने जो खुराक हमारे लिए चुनी उसमें अनाज, फल, मेवे और सब्जियां सम्मिलित हैं। ये भोजनाहार यदि साधारण तथा स्वाभाविक रीति से तैयार किए तो अत्यंत आरोग्यकर तथा पुष्टिकर हैं। ये भोजन पदार्थ ऐसी शक्ति और सहनशीलता और मानसिक बल प्रदान करते हैं जो मिश्रित तथा उत्तेजित भोजनहारों से प्राप्त नहीं होता। स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अच्छे पुष्टिकर भोजन की पर्याप्त सामग्री की आवश्यकता है। यदि हम बुद्धिमानी के साथ योजना रचें तो वे पदार्थ जो स्वास्थ्य को उन्नत करते हैं हर देश में प्राप्त हो सकते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, जई तथा सेम, मटर और दालें और उनसे बनाए हुए अनेक पदार्थ अन्य देशों को भी भेजे जाते हैं। देशी फलों अथवा विदेशों से मंगाए हुए फलों तथा स्थानीय रूप में पैदा की हुई नाना प्रकार की तरकारियों के साथ ये पदार्थ हमारी इच्छा के लिए वो संपूर्ण आहार उपस्थित कर देते हैं जिसमें मांस के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां कहीं ऐसे मेवे जैसे किशमिश, बेर, सेब, नाशपाती, आड़ू और खुरवानी उचित दामों पर प्राप्त हो सकती हैं, वहां यह देखा जाएगा कि ये मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में अधिकता से प्रयोग किए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप हर वर्ग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और बल में वृद्धि नजर आएगी। पाक विज्ञान।
पाक विद्या मामूली विज्ञान नहीं है और व्यावहारिक जीवन में परमावश्यक है। ये विज्ञान हर स्त्री को सीखना चाहिए और इसको इस रीति से सिखलाना चाहिए जिससे दरिद्र वर्ग को लाभ हो। भोजन को शुद्धावर्धक तथा साथ ही साथ साधारण और पुष्टिकर बनाने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, परंतु ये हो सकता है। पकाने वालों को साधारण भोजन ऐसी सादी और आरोग्यकर रीति से बनाना चाहिए कि वो अधिक स्वादिष्ट तथा अधिक स्वास्थ्यकर प्रतीत हो, क्योंकि वो सादी तौर से तैयार किया गया है। आइए हम अपने आहार को सरल बनाने में बुद्धिमानी से आगे बढ़ें। परमेश्वर ने दूरदर्शिता से हर देश में ऐसे खाद्य पदार्थ पैदा किए हैं जिनमें देह के निर्माण के लिए आवश्यक पोषाहार पाए जाते हैं। इनसे स्वास्थ्यकर क्षुधावर्धक आहार तैयार किए जा सकते हैं। बहुत से लोग महसूस नहीं करते हैं कि यह तो कर्तव्य की बात है, अतः वे योग्य रीति से भोजन तैयार करने की कोशिश नहीं करते। ये साधारण आरोग्यकर और सरल रीति से चर्बी, मक्खन अथवा मांस के प्रयोग किए बिना हो सकता है। सादगी के साथ बुद्धिमानी व कौशल अवश्य संयुक्त होनी चाहिए। ऐसा करने के हेतु स्त्रियों को पुस्तकें पढ़नी चाहिए और तब धीरज के साथ जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करें। फल, अनाज तथा सब्जियां जो साधारण रीति से बिना मसाले तथा बिना किसी प्रकार की ग्रीस या चर्बी मिलाए तैयार की जाती हैं, दूध, मलाई के साथ आरोग्यकर आहार उपस्थित करते हैं। अनाज और फल जो स्वाभाविक रीति से बिना चर्बी के तैयार किए जाते हैं, उन सबकी माल के आहार होने चाहिए जो जीते जी स्वर्ग में जाने की तैयारी का दावा करते हैं। आहारों में साधारणतः अत्यधिक शक्कर उपयोग की जाती है। अपचन का तत्काल कारण केक, हलवा, पेस्ट्री, जेली, मुरब्बे हैं। हलवे, खीर जिनमें दूध, अंडा और चीनी मुख्य सामग्री हैं, विशेषकर हानिकारक हैं। दूध के साथ शक्कर को मिलाकर स्वतंत्रता से प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। भोजन को तैयार करने में जितनी कम मात्रा में शक्कर मिलाई जाए, मौसम की गर्मी के कारण उतनी ही कम कठिनाई का अनुभव होगा। यदि दूध का प्रयोग किया जाए तो उसको पूर्णतः कीटाणु रहित करना चाहिए। इस प्रकार सावधानी बरतने से रोगग्रस्त होने का भय नहीं रहता। समय आएगा जब दूध का प्रयोग सुरक्षित न होगा, परंतु यदि गायें निरोग हैं और उनका दूध अच्छी तरह से उबाला गया है तो समय से पहले कष्ट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अत्यंत स्वादिष्ट मसालेदार भोजन, गरम मसाले, जिसका सेवन दुनिया के लोग अधिकता के साथ करते हैं, पाचन शक्ति के लिए हानिकारक है। इस तीव्रगामी युग में जितना कम उत्तेजक भोजन खाए जाएं उतना ही अच्छा है। गरम मसाले स्वाभाविक रूप में हानिकारक हैं। राई, गरम मसाले, चटनी इत्यादि अन्य समान पदार्थ आमाशय को चिड़चिड़ा और रक्त को उष्ण तथा अशुद्ध बनाते हैं। शराबी के आमाशय की सूजन का चित्र अक्सर मद्यपान के बुरे प्रभाव को दर्शाने में उपस्थित किया जाता है। गरम मसाले के प्रयोग से भी इसी प्रकार की सूजन आ जाती है। तत्पश्चात सादा भोजन क्षुधा को तृप्त नहीं कर पाता। देह को तो उत्तेजक पदार्थ का अभाव महसूस होता है। कुछ लोगों ने तो अपने स्वाद को ऐसा बना रखा है कि जब तक उनको वही वस्तु न मिले जिसके वे आदि हो गए हैं, उनको खाने में कोई मजा ही नहीं आता। यदि चटपटा मसालेदार भोजन उनके सामने रखा जाए तो अपने पेट से इस अग्निमय चाबुक द्वारा काम लेते हैं, क्योंकि उसके संग ऐसा व्यवहार किया गया है कि वह अनुत्तेजक भोजन को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। मसाले से सर्वप्रथम ती आमाशय का कोमल अस्तर कुपित हो जाता है, परंतु अंतिम में इस सूक्ष्म झिल्ली की स्वाभाविक शीघ्रग्राही गुण नष्ट हो जाता है। रक्त गर्म हो जाता है और पाश्विक प्रवृत्ति उत्तेजित हो जाती है और नैतिक तथा मानसिक शक्तियां कमजोर होकर अधर्म लालसाओं का दास बन जाती हैं। माता को अपने परिवार के सामने साधारण एवं पौष्टिक भोजन रखने के हेतु अध्ययन करना चाहिए। नियमानुकूल भोजन करना। नियमित भोजन करने के बाद आमाशय को 5 घंटे विश्राम देना चाहिए। जब तक दूसरे आहार का समय न आ जाए तक भी ग्रीस मुंह में न जाना चाहिए। इस बीच आमाशय अपना कार्य करेगा, फिर वह ऐसी हालत में होगा कि और भोजन ग्रहण कर सके।
भोजन करने में नियमितता का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। भोजन के समयों के बीच किसी किस्म की मिठाई, मेवे, फल, भोजन आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। खाने पीने में अनियमितता से पाचन इंद्रियों की स्वास्थ्य स्थिति नष्ट हो जाती है, यहां तक कि स्वास्थ्य और सुख को भारी क्षति पहुंचती है। और जब बालक मेज पर आते हैं तो वे आरोग्यकर भोजन आनंद के साथ नहीं खाते, उनकी क्षुधा उस पदार्थ की इच्छा करती है जो उनके लिए अहितकर है। जब हम विश्राम करने के लिए पलंग पर लेट जाएं, तो आमाशय को अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए ताकि वो और देह की अन्य इंद्रियां भी विश्राम का आनंद ले सकें। जो लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उनके लिए विशेषकर शाम का भोजन यदि विलंब से खाया जाए तो हानिकारक होता है। अनेक परिस्थितियों में खाने की मामूली इच्छा होती है, इसलिए कि पाचन इंद्रियों पर दिन में अत्यधिक जोर पड़ा है। एक बार भोजन करने के बाद पाचन इंद्रियों को विश्राम की आवश्यकता होती है। दो भोजनहारों के बीच कम से कम 5-6 घंटों का अंतर होना चाहिए, और यदि इस योजना की परीक्षा की जाए तो अधिकतम लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि दिन भर में 3 आहारों के बजाय 2 ही उत्तम रहेंगे। दिन में केवल 2 आहार खाने की आदत साधारण रीति में स्वास्थ्य के लिए हितकर पाई गई है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तीसरी खुराक की भी आवश्यकता होती है। यदि इसकी आवश्यकता हो तो यह बहुत हल्की और शीघ्र हजम होनी चाहिए। जब शिक्षार्थी शारीरिक और मानसिक परिश्रम दोनों साथ साथ करते हैं तो तीसरी खुराक की आपत्ति अधिकतर जाती रहती है। इस हालत में विद्यार्थी तीसरी खुराक बिना सब्जी के परंतु सादा स्वास्थ्यवर्धक भोजन, उदाहरणार्थ फल और रोटी, ले सकते हैं। भोजन को बहुत गर्म अथवा बहुत ठंडा नहीं खाना चाहिए। यदि भोजन ठंडा है तो हजम होने से पहले उसको गर्म करने के लिए आमाशय की प्राणदा शक्ति पर जोर पड़ता है। इसी कारण वे ठंडे शरबत हानिकारक होते हैं और गर्म पेय का बार बार इस्तेमाल कमजोर करने वाला होता है। वास्तव में भोजन के साथ जितना अधिक तरल पदार्थ का सेवन किया जाता है उतना ही भोजन के पचन के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि तरल पदार्थ को पाचन क्रिया के शुरू होने से पहले शोषण हो जाना चाहिए। नमक का अधिकता के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। चटनी, अचार और मसालेदार भोजनों को त्यागना चाहिए। फलों को बहुतायत में प्रयोग करना चाहिए। खाते समय जिस उत्तेजना के कारण पानी पीने की इच्छा होती है वो अधिकतर अंतर्धान हो जाएगी। खाना धीरे धीरे और खूब चबाकर खाना चाहिए, इसलिए कि लार भोजन के साथ अच्छी तरह से मिल जाए और पाचन तरल पदार्थ कार्यरत हों, इसकी आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुधारक सिद्धांतों को प्रयोग। पथ्य सुधार में असली साधारण बुद्धि की आवश्यकता है। इस विषय का विस्तार तथा गंभीरता के साथ अध्ययन होना चाहिए और किसी को एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक की आदत दूसरे सी नहीं होती। हर व्यक्ति की आदतों को विधिवत बनाने के लिए कोई अटल नियम बनाना असंभव है, और किसी को अपने तय दूसरों के लिए कसौटी नहीं बनाना चाहिए। सब लोग एक ही वस्तु नहीं खा सकते। कुछ भोजन जो एक व्यक्ति के लिए मजेदार तथा आरोग्यकर हैं दूसरे के लिए हानिकारक व अरुचिकर हों। कुछ लोग दूध का प्रयोग नहीं कर सकते पर दूसरे उसी पर पनपते हैं। कुछ लोग मटर तथा सेम हजम नहीं कर सकते परंतु दूसरों के लिए आरोग्यकर सिद्ध होते हैं। कुछ लोगों के लिए मोटे अनाज से तैयार किया भोजन अच्छा है परंतु दूसरे उन्हें खा नहीं सकते। भोजन की गलत आदत को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। जब आमाशय के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप अजीर्ण का रोग लग जाता है तो दबाव डालने वाले भार को हटाकर जरूरी शक्तियों के शेष बल को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी के साथ कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि देर तक दुरुपयोग के बाद आमाशय अपनी स्वास्थ्य अवस्था में फिर ना आ सकें, परंतु पथ्य की एक यथोचित व्यवस्था आगे की कमजोरी से बचा सकती है और कई एक न्यूनाधिक पूर्णतः स्वस्थ भी हो सकेंगे। बलवान पुरुषों को जो शारीरिक परिश्रम करते हैं अपने भोजन की किस्म और परिणाम के बारे में इतना सावधान होने की आवश्यकता नहीं है जितना बैठे बैठे काम करने वाले लोगों को आवश्यकता है, परंतु ये भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं यदि ये खाने पीने में आत्मनियंत्रण का व्यवहार करें। कुछ लोगों को इच्छा यह होती है कि उनके भोजन के लिए कोई विशेष नियम नियत किया जाता तो अच्छा होता। एक व्यक्ति दूसरे के लिए कोई खास नियम नहीं बना सकता। हर एक को अक्ल और आत्मनियंत्रण को काम में लाना चाहिए और सिद्धांत के अनुकूल चलना चाहिए। पथ्य सुधार प्रगतिशील होना चाहिए। जानवरों में बीमारी बढ़ जाने के कारण दूध और अंडे का सेवन अधिकाधिक भयानक होता जाएगा, तो कोशिश करनी चाहिए कि इनकी जगह कोई और चीजों का प्रयोग करें जो स्वास्थ्यवर्धक और सस्ती हैं। सब जगह लोगों को सिखलाना चाहिए कि जहां तक संभव है बिना दूध और अंडे के भोजन तैयार करें और उसे स्वास्थ्यकर और मजेदार बनाएं। देह की अवहेलना करने अथवा दुरुपयोग करने से परमेश्वर का आदर नहीं होता और इस प्रकार वह उसकी सेवा के लिए अयोग्य रहती है। गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है कि देह के लिए तथा बलवर्धक भोजन जुटाकर उसकी रक्षा करे। भोजन की सामग्री में कमी करने के बजाय यह बेहतर है कि कम मूल्य के वस्त्र पहने जाएं तथा घर का सामान सस्ता हो। कुछ गृहस्थ पारिवारिक मेज में कमी करके मेहमानों के लिए कीमती दावत तैयार करते हैं। यह मूर्खता की बात है। अतिथियों की खातिर करने में अत्यधिक सादगी होनी चाहिए। परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नादानी की मितव्ययता और कृत्रिम रीति रिवाज अतिथि सेवा में जहां उसकी जरूरत है और उससे आशीष मिलती है रुकावट डालते हैं। हमारी मेजों के लिए भोजन सामग्री ऐसी प्रचुर मात्रा में हो कि यदि कोई अतिथि ठीक खाने के वक्त पर आ जाए तो गृहिणी अतिरिक्त तैयारी करने के बजाय उसका स्वागत कर सके। अपने भोजन पर खूब सोच विचार कीजिए। कारण से परिणाम तक खूब अध्ययन कीजिए। आत्मनियंत्रण का अभ्यास कीजिए। अपनी क्षुधा को विवेकाधीन रखिए। अत्यधिक भोजन से पेट का दुरुपयोग न कीजिए, परंतु पेट को स्वास्थ्य स्वादिष्ट भोजन से जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हैं कभी वंचित न रखिए। जो लोग स्वास्थ्य के नियमों को समझते तथा उनकी पाबंदी करते हैं वे इन बातों से अर्थात खाने पीने में अतिरत रहने अथवा अपने ऊपर पाबंदियां लगाने से दूर रहेंगे। वे भोजन का चुनाव क्षुधा की तृप्ति के विचार से नहीं किंतु देह के निर्माण के विचार से करेंगे। वे प्रत्येक शक्ति को अच्छी दशा में रखने की चेष्टा करेंगे ताकि परमेश्वर की तथा मानव को उत्तम सेवा हो सके। उनकी क्षुधा विवेक और अंतःकरण के नियंत्रण में रहती है। इसी वास्ते उनको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का पारितोषिक मिलता है। यद्यपि वे अपनी सम्मति दूसरों पर नहीं लादते, उनका नमूना ही यथोचित सिद्धांतों के पक्ष में एक साक्षी है। ऐसे लोगों का सत्य के पक्ष में विस्तृत प्रभाव पड़ता है। सब्बत के दिन के लिए अन्य दिनों की अपेक्षा हमें भोजन सामग्री अधिकता में अथवा विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय भोजन साधारण हो और इसलिए कि आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए बुद्धि स्पष्ट और तीव्र हो, भोजन कम मात्रा में खाना चाहिए। सब्बत के दिन पकाने का काम बंद होना चाहिए, परंतु इसकी जरूरत नहीं कि उस दिन ठंडा खाना खाया जाए। ठंडे मौसम में कल का पका हुआ भोजन गर्म कर लेना उचित है। भोजन कितना ही सादा क्यों न हो, उसे स्वादिष्ट तथा रुचिकर होना चाहिए। विशेषकर उन परिवारों में जिनमें बच्चे हैं, सब्बत के दिन ऐसे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जो दावत जैसी समझी जाए, अर्थात जो अन्य दिनों से भिन्न हो। क्षुधा तथा विषय पर नियंत्रण। मनुष्य को क्षुधा के विषय में निकट प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मस्तिष्क और देह के बीच एक रहस्यमय तथा अपूर्व संबंध है। एक को दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन का प्रमुख अध्ययन देह को उसकी शक्ति की वृद्धि के हेतु स्वस्थ में रखता है, जिससे जीवित यंत्र कला का प्रत्येक पुर्जा एक लय में कार्य करें। देह की उपेक्षा करना मस्तिष्क ही की उपेक्षा करना है। परमेश्वर की संतान के लिए रोगग्रस्त देह अथवा ठिंगना दिमाग का होना उसकी महिमा का कारण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य को हानि करके स्वाद को प्रोत्साहन करना ज्ञान इंद्रियों का बड़ा दुरुपयोग है। जो लोग किसी प्रकार की असंयमता में खावे या पीने की आदत में व्यस्त रहते हैं, वे अपनी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को नष्ट करते हैं। वे प्राकृतिक नियमों के आज्ञा उल्लंघन के दंड को महसूस करेंगे। अनेक अत्यधिक खाने से तथा भोग विलास की कामना की तृप्ति से मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम दोनों के लिए अयोग्य हो जाते हैं। पाश्विक प्रवृत्ति बलवंत हो जाती और नैतिक तथा आत्मिक प्रकृति निर्बल हो जाती है। जब हम विशाल सफेद सिंहासन के इर्द गिर्द खड़े होंगे, उस समय बहुतों के इतिहास क्या क्या न प्रकट करेंगे। उस समय वे देखेंगे कि यदि वे परमेश्वर दत्त शक्तियों का निरादर न करते तो वे क्या क्या कर बैठते। उस समय वे महसूस करेंगे कि यदि वे परमेश्वर को सौंपी हुई सारी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को उसको वापस लौटा देते तो वे मानसिक महानता की ऊंची शिखर पर विराजमान होते। मानसिक वेदना में होकर वे चाहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि वे फिर से एक बार जीवन व्यतीत कर सकते। हर एक मसीही अपनी शुधा और विषय सुख पर नियंत्रण रखेगा जब तक वो शुधा की गुलामी तथा दासत्व से मुक्त नहीं। वो मसीह का सच्चा आज्ञाकारी दास नहीं बन सकता। शुधा तथा भोग विलास में रत रहने से सत्य का हृदय पर कोई असर नहीं होता। सत्य का सामर्थ्य तथा भावना के लिए असंभव है कि किसी मनुष्य की आत्मा देह प्राण को पवित्र कर सके, जबकि उसके ऊपर शुधा और विषय सुख का नियंत्रण है। मसीह के जंगल में उस लंबे व्रत धारण करने का ये प्रयोजन था कि हम आत्मत्याग तथा संयम की आवश्यकता को सीखें। इस कार्य का आरंभ हमारी खाने की मेजों से होना चाहिए और जीवन के सारे कार्य व्यवहार में दृढ़ता से पालन होना चाहिए। त्राणकर्ता स्वर्ग से मनुष्य की कमजोरी में मदद के निमित्त आया ताकि मसीह की शक्ति में वो शुधा भोग विलास पर विजय प्राप्त करने को बलवान हो और हर बात में विजयी हो जाए।